हेडिंग है अनाकलित व्यवसाय, पृष्ठ संख्या 230। उपन्यास जीवन का चित्र है, अतः कथा साहित्य के इस गद्य रूप से यह अपेक्षा रहती है कि उसमें जीवन में पाए जाने वाले तमाम पात्रों की उपस्थिति रहे। किसी भी भाषा साहित्य में कथा साहित्य की परिपूर्णता का एक मापदंड यह भी हो सकता है कि उसमें अपने समाज के सभी पात्रों का प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं। प्रस्तुत शोध प्रबंध का विषय नारी के विविध रूपों पर आधारित है, अतः उसमें नारी के अनेकानेक रूप आए हैं, परंतु फिर भी कुछ रूप ऐसे हैं जिनका चित्रण नहीं हुआ है, वे अनाकलित रह गए हैं। हमारे यहाँ कई विश्वविद्यालयों में महिलाएं कुलपति पद को सुशोभित कर चुकी हैं। बड़ौदा के विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति श्रीमती हंसा मेहता थी। सन 1995 से 1998 में इसी विद्यालय में श्रीमती पद्मा रामचंद्रन कुलपति पद पर कार्य कर चुकी हैं। अभिप्राय यह है कि ऐसे पदों पर महिलाएं एक अरसे से आसीन रही हैं, परंतु हिंदी के किसी उपन्यास में महिला वाइस चांसलर का चित्रण नहीं हुआ है। इसी प्रकार राज्यों के मुख्यमंत्रित्व पद पर भी अनेक महिलाएं रह चुकी हैं। सुचेता कृपलानी, सुश्री जयललिता, सुश्री राबड़ी देवी, सुश्री मायावती आदि इसके उदाहरण हैं, परंतु इसका भी चित्रण कहीं नहीं हुआ है। पुलिस कमिश्नर के रूप में श्रीमती किरण बेदी की कामयाबी तो सर्वविदित है, परंतु उसका भी आकलन नहीं हुआ है। अनेक महानगरों की महिलाएं मेयर के रूप में रह चुकी हैं, जैसे बड़ौदा की मेयर सुश्री भारती व्यास हैं। सूरत तथा अहमदाबाद में महिलाएं मेयर पद पर रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में श्रीमती सरला सिंह मेयर के पद पर कार्य कर रही हैं, परंतु अद्यावधि किसी हिंदी उपन्यास में इनका चित्रण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त फिल्म मेकर, टेलीफोन ऑपरेटर, पत्रकार, सेल्स गर्ल, हेयर ड्रेसर, कैबरे गर्ल्स, ब्यूटी पार्लर्स जैसे पात्र भी अद्यावधि हिंदी उपन्यास की परिधि में नहीं आए हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कामकाजी महिलाओं की समस्याएं। कामकाजी महिलाओं को दोहरा दायित्व वहन करना पड़ता है। नारी शिक्षा तथा पश्चिमी प्रभाव के कारण हमारे यहाँ महिलाएं अर्थोपार्जन के कार्य तो करने लगी हैं, परंतु सहस्त्राधिक वर्षों का पूर्व ग्रहित पुरुष मानस अभी बदला नहीं है। फलतः महिला को नौकरी के साथ साथ घर का ढसरहणा भी करना पड़ता है। ममता कालियाकृत नरक दर नरक की मिसेस सिन्हा इस त्रासदी की शिकार हैं। इधर लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी हैं, फलतः पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करते करते कई बार उन्हें अविवाहित रह जाना पड़ता है। टेराकोटा की मीति तथा 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा इसके उदाहरण हैं। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण एक आम बात है। पतझड़ की आवाजें, नावे, रेत की मछली, छाया मत छूना मन, डाक बंगला जैसे उपन्यासों में इस तथ्य को लक्षित किया जा सकता है। कामकाजी महिला को गृह कार्य के उपरांत बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके होमवर्क इत्यादि की चिंता भी करनी पड़ती है। कामकाजी महिला की जीवन में दाम्पत्य भंग होने की संभावना बराबर बनी रहती है। पृष्ठ संख्या 231। इसके कारण दाम्पत्य जीवन में दरारें आने के कई उदाहरण उपलब्ध होते हैं। मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी इसका ज्वलंत प्रमाण है। निष्कर्ष। अध्याय के समग्रावलोकन में हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। पहला, परिवर्तित सामाजिक स्थितियों में कामकाजी महिला की एक अलग विभावना अस्तित्व में आई है। दूसरा, घर तथा परिवार के कार्यों को छोड़कर जो महिलाएं अर्थोपार्जन के क्षेत्र में लगी हैं, उनको कामकाजी महिलाओं की संज्ञा प्राप्त होती है। तीसरा, इसके साथ सामाजिक मूल्यों का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। वैश्यावृत्ति से भी धनोपार्जन होता है, परंतु वैश्या को कामकाजी महिला की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। चौथा, आर्थिक व्यवस्थाएं, शिक्षा का प्रसार, समाज का विकसित दृष्टिकोण, भौतिकता की दौड़, समय की रिक्तता को भरने का प्रयास आदि कारक हैं जो महिलाओं को कामकाजी महिला बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं, कल्याण योजना में काम करने वाली महिलाएं, खेतों तथा खदानों में काम करने वाली मजदूरी ने ग्रामीण क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं हैं। नगरीय परिवेश में अध्यापिकाएं, प्राध्यापिकाएं तथा उच्च पदों पर काम करने वाली और कारखानों में तथा कार्यालयों में काम करने वाली महिलाएं मिलती हैं। छठवां, कुलपति, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, मेयर, फिल्म मेकर, पत्रकार, हेयर ड्रेसर जैसी कामकाजी नारी पात्र अभी हमारे उपन्यास साहित्य में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। समाप्त।